दूसरा इतिहास अध्याय 20। अध्याय 20 में बताया गया है कि तीन देश यहूदा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए, मोआब, अमोन और सेईर के पहाड़ी देश के लोग मुआबी, जो शायद एदोमी थे। यहोशोपात के पास वो वचन पहुंचा कि यहूदा को इन संयुक्त राज्यों ने घेर लिया है और वे मृत सागर के पार एन गेदी घाटी तक आ गए हैं और यहां पहुंचने ही वाले हैं। ये एक नदी है जिसे मुसाफिर घाटी और यहोशोपात की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने यहोशोपात को विजय दिलाई थी और इसलिए ये घाटी यहोशोपात की घाटी के नाम से जानी जाती है। ये रोचक है कि परमेश्वर ने उस आक्रमण करने वाली सेना को नष्ट कर दिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, परंतु एहेस्केल हमें बताता है कि एक और संयुक्त सेना होगी जिसे रूस लेकर चलेगा, जिसके साथ बहुत से पूर्वी यूरोप के देश तथा बलकान राष्ट्र तथा ईरान तथा सऊदी अरब आदि होंगे। वे भी मुसाफिर घाटी में नाश किए जाएंगे। इस तरह इतिहास दोहराया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकांश विनाश इसी तरह से होगा, क्योंकि विनाश जो एहेस्केल की पुस्तक में बताया गया है, इसके बारे में परमेश्वर ने कहा है। एहेस्केल 38 अध्याय 21 पद, हरेक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। परमेश्वर आंतरिक क्रांति की बात करता है जो साम्यवादी राज्यों और उन देशों में आएगी जिन्हें वो इसराइल के विरुद्ध उस समय लेकर चलना चाहेगा। इसके अतिरिक्त परमेश्वर का न्याय उन पर पड़ेगा। परंतु उस समय लोग यहोशोपात की घाटी से गुजरेंगे, वहां पंजर और हड्डियां देखेंगे, वे वहां झंडे लगाएंगे। इस घाटी में जिसमें परमेश्वर ने एक बार इसराइल के शत्रुओं को नाश किया, उसी घाटी में इसराइल एक बार और आक्रमण करने वाली सेनाओं का नाश करेगा। मैं इसमें बहुत आकर्षक बात पाता हूं। यहोशोपात ने जब सुना कि तीन देश इकट्ठे हुए हैं कि उसके देश पर आक्रमण करें, उसने यहूदा को बुलाकर इकट्ठा किया और उपवास की घोषणा की और स्वयं परमेश्वर की खोज में लग गया। लोग जमा हो गए। अध्याय 20 पद 5 और 6। तब यहोशोपात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? एक प्रकार परमेश्वर पृथ्वी का शासक है, क्योंकि जो कुछ भी पृथ्वी पर होता है वो परमेश्वर की आज्ञा से होता है। तो भी यीशु ने कहा है कि शैतान वर्तमान समय में पृथ्वी पर राज्य करता है। परमेश्वर उसे राज्य करने देता है, परंतु वास्तव में सर्वपरि राजा परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने अपने राज्य में मनुष्य को नैतिक निर्णयों की स्वतंत्रता प्रदान की है, अर्थात चुनाव करने की स्वतंत्रता आदि। वो जिसे चाहे उसे अपने ऊपर प्रभु मान सकता है। अधिकांश मनुष्यों ने चुनाव किया है कि शैतान उनके जीवनों पर राज करे। परमेश्वर ने मनुष्यों के चुनाव का विरोध नहीं किया, उसने मनुष्य को छूट दी कि वो चुनाव करे, और परमेश्वर ने उसके चुनाव का आदर भी किया। इस प्रकार आज संसार में शैतान शासन करता है। जब यीशु आया, शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सब राज्यों को उसे दिखाकर कहा, मती 4 अध्याय 9 पद, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान यीशु से डींग मार रहा था। ये सब मेरा है, मुझे अधिकार है कि मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। यीशु ने कोई विवाद नहीं किया। वास्तव में यीशु किस लिए आया था? वो संसार को शैतान की इसी प्रभुता से छुटकारा दिलाने आया था। यीशु शैतान को पृथ्वी का राजा कहता है। जिस तरह वो पकड़वाया गया, उसने अपने चेलों से कहा, योहन्ना 14:28, मैंने तुमसे कहा है कि मैं जाता हूं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। परंतु अब उसने कहा, योहन्ना 14:30, इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। शैतान को मसीह ने संसार का सरदार कहकर पुकारा था। पौलुस उसे संसार का ईश्वर कहता है। अविश्वासियों के संदर्भ में वो कहता है, दूसरा कुरिंतियों 4:14, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस प्रकार हम देखते हैं कि शैतान संसार पर राज्य करता है। आज के युग में ये उसका अधिकार क्षेत्र है, उसका राज्य है। जब मसीह विरोधी आएगा, प्रकाशित वाक्य 13 कहता है कि शैतान अजगर उसे अपना अधिकार और सिंहासन देगा। शैतान ने यीशु से कहा, ये सब मेरा है, मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। वो मसीह विरोधी को ये संसार दे देगा कि वो उस पर राज्य करें। ये एक रोचक बात है कि संसार के बहुत से अगुवे तंत्र विद्या में लीन है। आधुनिक समय में एक विशेष मनुष्य हिटलर भी था, जो वास्तव में सफेद जादूगरों के द्वारा निर्देशित किया जाता था। वे मनुष्य सफेद जादू में सिद्धहस्त थे, जिसमें से बहुत हिटलर की मृत्यु के बाद पेरू चले गए। वहां पर भी वे अपनी जादूगरी की शक्ति और नियंत्रण बहुत से लोगों पर प्रयोग करते थे। हिटलर उनसे निर्देश लेता था और इन जादूगरों की राय का अनुसरण करता था। शैतान एक दिन अपना पूरा अधिकार और शक्ति मसीह विरोधी को देगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय कम है। वचन कहता है कि वो जानता है कि उसका राज्य समाप्त होने पर है, इसलिए इससे पहले कि वो दृश्य से विलोप हो जाए, वो अपनी यथाशक्ति अव्यवस्था फैला रहा है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, सो तुम प्रार्थना करो तो कहो, मती 6:9-10, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आए, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो, क्योंकि अभी उसका राज्य नहीं आया है, उसकी इच्छा यहां पूरी नहीं हो रही है। जैसा परमेश्वर चाहता है या जैसा उसने चाहा था, आज संसार वैसा नहीं है। वो ऐसा संसार नहीं चाहता जिसमें दुख, युद्ध और तंगी, मुद्रास्फीति और गंदगी आदि हो। बाइबल बताती है कि जब वो अपना राज्य स्थापित करेगा, धार्मिकता पृथ्वी पर ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र में पानी होता है, और तब शारीरिक कष्ट जैसे आज होते हैं न रह जाएंगे। इस राज्यकाल के दौरान शैतान को बांधकर अंधकार में डाल दिया जाएगा, और उस समय यीशु मसीह 1000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर राज्य करेगा। जब यहोशापात ने कहा, क्या तू पृथ्वी पर राज नहीं करता, ये इस विचार से था कि परमेश्वर पूरे जगत पर राज करता है, परंतु पृथ्वी एक ग्रह है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध गई, और यही कारण है कि इस ग्रह पर दुख और तकलीफें हैं, और ये विनाश, महामारियां और विपदाओं की ओर बढ़ रहा है जो शीघ्र ही आने वाले हैं। इस महान क्लेश के समय के बाद मसीह आकर राज करेगा, और परमेश्वर का राज्य फैलकर पूरी पृथ्वी को भर देगा। यहोशापात ने अपनी प्रार्थना में परमेश्वर की महानता को स्वीकार किया और उसने माना कि परमेश्वर ही उन्हें उस देश में ले गया था। हमारे पितरों को तू ही ये देश दिया था, क्योंकि तूने इब्राहिम और उसके वंश के लिए ये देश देने की प्रतिज्ञा की थी। निस्संदेह परमेश्वर ने वहां के रहने वालों को निकाल दिया था। फिर उसने कहा, उन्होंने इस भवन को बनाया, वे सब मंदिर में खड़े हुए थे, और उसने कहा, तेरे नाम से पवित्र स्थान बनाया था, और उसने कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन में खड़े होकर तेरी दुहाई दे। अध्याय 20 पद 9 में सुलेमान की उस प्रार्थना का संदर्भ दिया गया है जो उसने मंदिर के समर्पण के समय की थी। अध्याय 20 पद 8, वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, तब उसने ये कहा था। अध्याय 20 पद 9, कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। तो वह सबसे पहले परमेश्वर की महानता को सराहता है और परमेश्वर के उद्देश्य को, जिसके लिए वे उन्हें वाचा के देश में लेकर आया। जब वे मुसीबतों में थे, जब उन पर युद्ध के बादल मंडलाते थे, तब वे परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करते थे और वो सुनता था। अब वो अपनी प्रार्थना का कारण बताता है, मोआबी, अमोनी और एदोमी हमारे विरुद्ध आए हैं और हमारी क्षमता से अधिक है, हमारे पास शक्ति नहीं है, हम उनके सम्मुख हियाव नहीं रखते। वो परमेश्वर से सहायता मांगता है। अध्याय 20 पद 12, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारे तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर, हम ऐसे शत्रुओं का सामना कर रहे हैं जो हमसे शक्तिशाली है, हम नहीं जानते कि क्या करें, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। मैं भी अनेक बार ऐसी स्थिति में होता हूं जब सब कुछ मेरी क्षमता से परे दिखाई देता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं, तब मैं परमेश्वर की ओर निहारता हूं, हे प्रभु, मेरी आंखें तुझ पर लगी है, बुद्धि, मार्गदर्शन और सहायता के लिए तेरी ओर निहारता हूं। परमेश्वर ने यहोशापात को यहजीएल, जो जकरिया का पुत्र था, उसके द्वारा उत्तर दिया। मंडली के बीच में परमेश्वर का आत्मा उसमें समाया। अध्याय 20 पद 15 से लेकर 17 तक, और वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूवेल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब परमेश्वर हमारा पक्ष लेता है और हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा होता है तो आश्चर्य कर्म ही होते हैं। भजन संहिता 46 पहला और दूसरा पद, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। कितना आश्चर्यजनक है जब परमेश्वर मेरा बल है, मेरा शरण स्थान और बचाने वाला। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल यदि तुम जीत की चोटी पर जाकर वहां से येरुवेल की घाटी को देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे और परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। फिर से सुनो, मत डर और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। परमेश्वर की उपस्थिति की चेतना हमारे जीवन से भय निवारण का कारण है। मैं बहुत डरा रहूंगा जब तक मैं ये अनुभव न करूंगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। कभी कभी अचानक ही मैं भयभीत हो जाता हूं। ये तब होता है जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति का आभास खो देता हूं। ये तब होता है जब मैं स्थिति को उसके दृष्टिकोण से हट कर देखता हूं और भूल जाता हूं कि मेरा जीवन उसी का है, ये चर्च भी उसी का है, और मैं स्वयं बोझ उठाने लगता हूं। इस कारण कभी कभी मैं डर जाता हूं। दाऊद कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जा रहा है, तू अंधरी अंदर क्यों व्याकुल है। इसी प्रकार मैं कभी कभी बड़ा निराश हो जाता हूं। इसका मूल कारण है कि मैं भूल जाता हूं कि सब कुछ परमेश्वर का है, मैं उसी का हूं, वो मुझ में वास करता है। दाऊद ने कहा, परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। क्या आप परमेश्वर को भूल गए हैं? क्या आप भूल गए हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है? कितनी बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है और हम युद्ध के बोझ को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। इस प्रकार हम संपूर्ण निराशा तक प्रयास करते चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है, मत डर और ना तेरा मन कच्चा हो, मैं तेरे साथ रहूंगा। अतः इसके परिणाम स्वरूप अध्याय 20 पद 18, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। ये कितना सुंदर वचन है। हम सोच रहे थे हम मिट जाएंगे, हमारे बचने का कोई कारण नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हें उस बड़ी सेना से लड़ना भी ना पड़ेगा जिसने देश को घेरा है, उन्हें बस खड़े देखते रहना है, वे वहां जाकर परमेश्वर को युद्ध करते देखेंगे। हम बराबर में खड़े रहकर परमेश्वर द्वारा शत्रु को नाश होते देखेंगे। जब लोग परमेश्वर के सम्मुख दंडवत कर रहे थे तब याजक खड़े होकर ऊंची आवाज में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। अगली सुबह उन्होंने यरूशलेम छोड़ दिया, हिनोम की घाटी से होते हुए दक्षिण में बेतलहम की ओर से चरवाहों की भूमि के निकट से बेतलहम की घाटी से चले। इस स्थान को पार करके दक्षिण की ओर छोटे गांव टेकवा, जो आमोस नबी का घर था, आ गए। टेकवा के पीछे जीज की चोटी है जहां से एनगेदी घाटी के जंगल दिखाई देते हैं। इस घाटी में आक्रमण करने वाली सेना देश में आ रही थी। यहूदा की ये सेना कैसे दिखती होगी, क्योंकि सेना के सबसे आगे संगीत मंडली थी जो परमेश्वर की स्तुति गा रही थी और लोग स्तुति में अपनी प्रतिक्रिया दिखा रहे थे। वे कहते थे, परमेश्वर की बड़ाई हो क्योंकि वो भला है, और सेना उत्तर देती होगी, क्योंकि उसकी दया सदा की है। वे लोग युद्ध के मैदान में प्रशंसा करते हुए परमेश्वर की विजय देखने जा रहे थे, क्योंकि उसकी दया सदा की है। विजय प्राप्त करने से पहले विजयी होना संभव है। पौलुस कहता है रोमियो 8:37, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। इसका क्या अर्थ है? मुझे मालूम है विजयी होने का अर्थ क्या है, परंतु जैवन से भी बढ़कर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वास्तविक विजय से पहले विजय पा लेना, अर्थात युद्ध आरंभ होने से पहले विजय पा लेना। ये महान विजय आपके हृदय और आत्मा में होती है। आप आनंद करते और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जो परमेश्वर के कार्यों को देखने से पहले ही की जाती है। वे ऐसी स्थिति में थे, उनके हृदय उन्मादित थे, वे आनंद मना रहे थे, वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके पास था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके पास थी कि वो उनके शत्रुओं को नष्ट कर देगा। उनके युद्ध स्थान में पहुंचने से पहले ही देखें परमेश्वर क्या कर रहा है। वे पहले से आनंद मनाते और परमेश्वर की प्रशंसा उस विजय के लिए जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी जोरों से करते थे। वो दृश्य कैसे भव्य रहा होगा। घाटी मनुष्यों से भरी थी, करीब 2,00,000 वीर संगीत मंडली की अगुवाई कर रहे थे। वे परमेश्वर के कार्य को देखने जा रहे थे जब वो उनके शत्रुओं को उनके हाथ में कर देगा। अध्याय 20:22, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मुआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। जब वे प्रशंसा कर रहे थे परमेश्वर ने शत्रुओं को नाश करने का अपना कार्य आरंभ किया। आपके जीवन में स्तुति के द्वारा महान विजय आ सकती है, परंतु ये विजय तब होगी जब आप परमेश्वर की स्तुति करना सीख जाते हैं और उसकी स्तुति में समय लगाते हैं। हमें उसकी प्रतिज्ञाओं का अपनी स्थिति में व्यवहारिक बनाना चाहिए और तब उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए उसका गुणगान करना चाहिए, उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो उसने परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए हमें दी है। मैं नहीं सोचता कि आपको अपने उद्धार के लिए उसकी स्तुति करनी चाहिए कि आप उसे नहीं दे सकते हैं, परंतु मेरे विचार में आपको निश्चय ही उसकी इस प्रतिज्ञा के लिए गुणगान करना चाहिए। फिलिपियों 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। इसलिए मैं उन भुगतानों के लिए जो मैं पैसा उद्धार देने वालों से पाता हूं प्रशंसा नहीं कर सकता, परंतु मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए स्तुति कर सकता हूं कि उसने सब जरूरतें पूरी करने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए मेरी स्तुति उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए है और जब मैं स्तुति करता हूं परमेश्वर अपना कार्य आरंभ करता है। बहुत बार उसका कार्य रहस्यपूर्ण होता है, मैं नहीं जानता वो कैसे कार्य करेगा, परंतु वो कार्य आरंभ करता है और उसे पूरा भी करता है। ये महान बात है कि ज्यों ही उन्होंने स्तुति आरंभ की त्यों ही परमेश्वर ने छापा मारों को उनके शत्रुओं के विरुद्ध बैठा दिया। अपनी स्थिति, अपनी समस्याओं और जीवन की परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर से शिकायत करने में अधिकांश समय लगा देते हैं। यदि शिकायत का ये समय हम उसकी प्रतिज्ञाओं के कारण स्तुति में लगाएं कि वो हमें देखें, छुड़ाएं, हमारे साथ रहें और आशीष दें, तब हम देखेंगे कि परमेश्वर स्तुति के मध्य आपके हृदय में विजय देगा। अचानक आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जब मैं उसके वचन और प्रतिज्ञा के बारे में सोचूंगा तब मेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। डर और कच्चे मन से हटकर वो विश्वास और विजय में बदल जाएगा। ठीक है प्रभु, उन पर चढ़ाई कर, मेरे पास सुंदर विश्वास है कि तू कार्य कर रहा है। जब उन्होंने स्तुति की तब परमेश्वर ने उनके शत्रुओं के विरुद्ध घातकों को बिठा दिया, और जब वे लोग जीज की चोटी पर पहुंचे और घाटी में नीचे देखा तब उन्होंने घाटी को मृतकों से भरा हुआ देखा, क्योंकि एदोमी सेना मुआबियों से लड़ने लगी और वहां युद्ध होने लगा। अमोनियों ने भी युद्ध में भाग लिया, इसलिए सब आपस में एक दूसरे को मारने लगे, और जब तक इसराइल की संतान वहां पहुंचे वे सब खत्म हो चुके थे। परमेश्वर भला है। मेरा एक मित्र बता रहा था कि एक रात उसका प्रशिक्षण अधिकारी और वो ड्यूटी पर थे कि उसके अधिकारी ने एक कार को रोका, चेकिंग शुरू कर दी। उसमें 6 मोटे तगड़े अपराधी थे। उनमें से एक चिल्लाया, वे केवल 2 हैं, उनकी बंदूकें छीन लो और हम उनका भेजा उड़ा देंगे। एक ने मेरे सीनियर पर छलांग लगा दी और उसकी बंदूक छीनने लगा। मेरे सीनियर ने उससे कोहनी से मारा और हम क्या देखते हैं कि सब आपस में ही गुत्तम गुत्ता हो गए। उन्हें देख हम बौचक्के रह गए। तब हम दोनों में से किसी को भी चोट नहीं आई। मैंने कहा, प्रभु की स्तुति हो, उसी ने उन्हें चक्कर में डाल दिया। परंतु इब्रानियों 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है। वो शत्रुओं को दुविधा में डाल सकता है, वो अपने बच्चों को संकट से छुड़ाता है, खतरों से निकालता है, वो युद्ध के बीच में भी आपका बाल बांका न होने देगा। प्रभु सर्वदा एक सा है। वे नीचे उतरे तो उन्होंने पाया कि उन लोगों ने युद्ध में भी आभूषण पहने हुए थे। सब कीमती मोती और शेष मूल्यवान वस्तुएं जो उन्होंने पहन रखी थी। उन्होंने सभी शवों पर से मूल्यवान वस्तुएं उतारनी आरंभ की, सोने चांदी के आभूषण, और वहां इतनी लूट थी कि वे उठा न सके। सारे शवों पर से आभूषण उतारने में उन्हें 3 दिन लगे और वे प्रभु में आनंद मनाते हुए लौटे। अध्याय 20:26। चौथे दिन वे बराका नाम तराई आशीष की घाटी में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। उन्होंने तराई का नाम बराका रखा जिसका अर्थ है आशीष की तराई जो आज भी वहां है। अध्याय 20:27 से लेकर 34 तक। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। सो वे सारंगियां वीणाएं और तुरिया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए, और जब देश देश के सब राजाओं के लोगों ने सुना कि इसराइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यों यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वो राज्य करने लगा तब वो 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम अजूबा था जो शिलही की बेटी थी, और वो अपने पिता आसा की लीक पर चला और उससे ना मुड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करता रहा। तो भी ऊंचे स्थान डाए ना गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर ना लगाया था, और आदि से अंत तक यहोशापात के और काम हनानी के पुत्र येहू के विषय उस वृत्तांत में लिखे हैं। यहोशापात ने एक बार फिर इसराइल के राजा अहज़याह से मेल किया। अहजया आहाब का पुत्र था और बहुत ही दुष्ट मनुष्य था, परंतु यहोशापात इसराइल के राजा की ओर अनोखा खिंचाव रखता था और उन दोनों ने समझौता किया कि वे पानी के जहाज बनाएंगे ताकि वे तर्शीश को जाकर सोना और अन्य चीजें ला सके। परंतु जहाज तूफान में टूट गया और वे कभी तर्शीश नहीं पहुंचे। वास्तव में एलियाजर नबी ने यहोशापात के विरुद्ध भविष्यवाणी की थी, क्योंकि तूने स्वयं को अहजया के साथ जोड़ा है, इसलिए प्रभु ने उनके कृत्य को नष्ट किया।